आज के मुख्य समाचार में, कर्मचारियों की गंभीर कमी के जवाब में विक्टोरिया ने सभी मेलबर्न अस्पतालों और 6 क्षेत्रों के लिए एक कोड ब्राउन आपातकाल किया घोषित। फर्जी कोविड घरेलू परीक्षण परिणामों की रिपोर्ट करने वालों के लिए चेतावनी जारी। और खेल में एशेज जीत समारोह के दौरान किए समावेश के इशारे पर उस्मान ख्वाजा ने अपने साथियों का किया धन्यवाद। अब समाचार विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को चेतावनी दी है कि सकारात्मक रैपिड एंटीजन परीक्षण परिणामों की फर्जी रिपोर्टिंग पर उन्हें भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। श्री ब्रैड हैजर्ड का कहना है कि वे स्वयं एक कपटी कोविड परीक्षण रिपोर्ट का शिकार रहे हैं। किसी ने उनके नाम का उपयोग करके स्वयं को RAT परीक्षण परिणाम में सकारात्मक घोषित किया था। यह मजाक सर्विस न्यू साउथ वेल्स की ऐप और वेबसाइट द्वारा स्वयं रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया।
It is juvenile, it is moronic, but it's also just so disappointing to think that you would actually undermine an incredibly hard-working public health team here in New South Wales trying to keep us safe. I also want to remind people who do that that there is a $5,000 fine for anybody who misrepresents any facts to the New South Wales Health. The police will come hunting, and if you're caught, you'll cop a $5,000 fine.
रॉयल मेलबर्न अस्पताल ने लोगों से आग्रह किया है कि जब तक कि उन्हें बिल्कुल तत्काल विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता ना हो, वह आपातकालीन विभाग से बचे रहें। विक्टोरियन सरकार ने सभी महानगरीय अस्पतालों और 6 क्षेत्रीय अस्पतालों के लिए एक कोड ब्राउन की घोषणा की है। कर्मचारियों की कमी को हल करने के लिए गैर जरूरी सेवाओं को स्थगित करने की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों को उनकी आगामी छुट्टी रद्द करने के लिए भी कहा जा सकता है। यह उपाय आज दोपहर से प्रभावी हो चुका है और 6 सप्ताह तक चलने की आशंका है। रॉयल मेलबर्न अस्पताल में आपातकालीन विभाग नर्स यूनिट प्रबंधक सुजन हार्डिंग ने लोगों से टेली हेल्थ अपॉइंटमेंट का उपयोग करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
We had a patient last week that was desperate for a PCR. They called 000, called an ambulance under the guise of having chest pain. They presented to the emergency department and were fast-tracked down to a resuscitation room, at which point they declared that they didn't have chest pain and they really wanted a PCR and wanted it quickly. That is an unbelievable misuse of resources.
फिलहाल लगभग 5,000 स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 संक्रमण की वजह से या निकट संपर्क होने के कारण काम के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उधर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में राज्य सरकारें महीने के अंत में स्कूलों को फिर से खोलने की रणनीति में छात्रों के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षणों के उपयोग पर विचार कर रही है। गुरुवार की राष्ट्रीय कैबिनेट में भाग लेने वाले नेताओं को प्रस्तुत की जाने वाली योजना के तहत छात्रों को कक्षा से पहले सप्ताह में 2 बार घर पर रैपिड टेस्ट लेने के लिए कहा जा सकता है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरेटे का कहना है कि इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों को बंद करने की जरूरत ना पड़े।
There will be challenges as we go through the reopening of schools. There's no doubt about that. But we are determined to make it as smooth as possible. Now that will mean at times teachers who are positive will have to isolate. It will mean at times that kids who are positive will need to isolate. But that is a better issue to be dealing with than having our schools closed. We need kids back in the classroom. It's best for their educational outcomes, their mental health, and their social outcomes.
संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस बात की पुष्टि होने में अभी भी कुछ समय लग सकता है कि क्या ओमिक्रॉन प्रकोप का चरम बीत चुका है, जबकि विभिन्न मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि नए संस्करण से जुड़े कोविड-19 मामलों की संख्या स्थिरांक हो रही है। प्रमुख महामारी विज्ञानियों का कहना है कि अधिक सटीक तस्वीर मिलने में 2 या 3 सप्ताह लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर संजय सेनानायके ने 9 नेटवर्क को बताया कि अस्पताल में भर्ती होने का डेटा यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि शिखर को कब पार किया गया।
Reason being that the numbers that the chief health officers are telling us every day about their state or territory are likely to be very inaccurate because there's just so much Omicron out there and there's a lot of asymptomatic Omicron out there. So we really don't know what those numbers mean. But we do know that there is a delay from a case to a hospitalisation by 2 or 3 weeks normally. Because of the delays in testing, that interval is going to be shorter. But hospitalisations will tell us when we've actually reached the peak in society.
आज मध्यरात्रि से तस्मानिया जाने वाले पूर्ण टीकाकृत घरेलू यात्रियों को अब एक नकारात्मक रैपिड एंटीजन टेस्ट परिणाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रीमियर स्टीवन गटवेन का कहना है कि बिना टीकाकरण वाले यात्रियों को अभी भी 5 दिनों के संगरोध से गुजरना होगा और एकांतवास छोड़ने से पहले एक नकारात्मक परीक्षण करना होगा।
Demonstrate that unvaccinated people are up to 24 times more likely to end up in an ICU than someone who is vaccinated. And that's why that particular border measure regarding unvaccinated travel will remain in place for the moment.
पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड 19 के 1,310 मामले दर्ज किए गए। फिलहाल अस्पताल में 25 कोविड 19 रोगी दाखिल हैं, जिसमें से 2 गहन देखभाल में हैं। क्वींसलैंड की स्वास्थ्य मंत्री सुश्री येवेत्यात का कहना है कि वह गुरुवार की राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक से पहले नेताओं के साथ वृद्ध देखभाल घरों में बूस्टर शॉट्स के रोल आउट में तेजी लाने का मुद्दा उठाएंगी। ये तब आता है जब सेक्टर में कोविड के प्रकोप की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह के अंत में जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि तकरीबन 1100 सुविधाओं में 7000 वृद्ध देखभाल निवासी कोरोना से संक्रमित हैं। लगभग 4 में से 3 वृद्ध देखभाल निवासियों को बूस्टर शॉट मिल चुका है, लेकिन मंत्री डाट का कहना है कि टीकाकरण दर अधिक होनी चाहिए।
Some of the in-reach that the Commonwealth have been doing, there hasn't been 100% take up of boosters, and I want to know why. I don't want to hear that only 2/3 ended up taking up a booster. Are we not messaging properly? Are we not communicating with the residents? Are we not communicating with the families? This virus finds the unvaccinated. Now we can say Omicron finds the elderly who haven't had a booster, and we need to get them boosted.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में 2,58,000 कोविड 19 मामले दर्ज किए और 385 मौतें हुईं। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 8,209 हो गई है। फिलहाल रिकवरी दर 94.27% माना जा रहा है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 72 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.54 रुपये है। खेल समाचार में क्रिकेट में उस्मान ख्वाजा ने अपने साथियों के सम्मान और समावेश की प्रशंसा की है। होबार्ट में इंग्लैंड पर जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक ग्रुप फोटो के वक्त शैंपेन की बोतलें खोल रहे थे जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का ध्यान इस बात पर गया कि उस्मान ख्वाजा विक्ट्री मंच से उतरकर दूर चले गए। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को शैंपेन छिड़काव बंद करने का इशारा किया ताकि ख्वाजा टीम की जीत के समारोह का हिस्सा बन सके। उस्मान ख्वाजा एक मुस्लिम परिवार से हैं जहां शराब प्रतिबंधित है। एक ट्वीट में ख्वाजा ने अपने साथियों को उनकी विचारशीलता के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, अगर ये वीडियो आपको नहीं दिखाता है कि टीम के साथी मेरा किस तरह से समर्थन करते हैं तो मुझे नहीं पता कि और क्या दिखाया जा सकता है। खेल में समावेश बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बहुत गर्मी रहने की संभावना, धूप खिली रहेगी। यहां का न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 40 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में भी ज्यादातर धूप रहने की संभावना, यहां का न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 29 तक जाएगा। मेलबर्न में मौसम साफ रहने की संभावना और ज्यादातर धूप रहेगी, यहां का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 27 डिग्री। कैनबरा में भी बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 21। सिडनी में हल्की बारिश की संभावना, न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 25 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक या दो बौछार होगी, न्यूनतम 23 और अधिकतम 31 डिग्री। डार्विन में हल्की बारिश के साथ तूफान की आशंका, न्यूनतम 25 और अधिकतम 33 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल आंशिक बादल रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 18 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।